और अब पुतना के स्तन का दूध समाप्त हो गया, अब कृष्ण पुतना के प्राण पीने लगे। धीरे धीरे करके पुतना को कष्ट होने लगा। पुतना यह सोचकर आई थी कि मैं इसे मार डालूंगी, ये मर जाएगा, परंतु अब तो स्वयं पुतना कष्ट में आ गई और अब पुतना को लग रहा है कि अब ये मुझे छोड़ेगा तो अच्छा है। पुतना कृष्ण को अपने से छुड़ाने लगी, परंतु कृष्ण छोड़े नहीं। छोड़ रे, छोड़ 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 कहने लगी, कृष्ण छोड़े नहीं। अंत में धीरे धीरे पुतना अपने उस जो नकली शरीर लेकर आई थी उसे टिकाकर नहीं रख पाई। पुतना ने सोचा, यहां पर यदि मेरा स्वरूप खुल गया, हाहाकार मच गया, मच जाएगा। पुतना उस घर से दौड़कर बाहर निकल गई और कृष्ण से कहने लगी, ए छोड़ रे, छोड़ रे, छोड़। पुतना अपने से कृष्ण को छुड़ाना चाहती है, परंतु कृष्ण छूट नहीं रहे। भक्तों, यही है हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव। पहले तो किसी के हाथ में आते नहीं है, कितना मेहनत करो, प्रयास करो, हाथ में आते नहीं है, और जिसके हाथ में आ जाते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। ये पुतना छुड़ाना चाहती है, छोड़ नहीं रहे। और कृष्ण ने एक झटके में पुतना के प्राण को पी लिया, और उसी समय जैसे आकाश से पर्वत गिरता है वैसे उस पर्वत के समान पुतना पृथ्वी के ऊपर गिरी। पुतना पृथ्वी पर गिरी जैसे धरती कंप हो गया, पूरे ब्रह्मांड में प्रलय के समान आवाज आ गया। सब लोग अपने घर से दौड़े, दौड़कर यशोदा इत्यादि सभी सखियां आई। यशोदा ने देखा कृष्ण पुतना के उस लंबे शरीर पर। भक्तों, भागवत में वर्णन है, पुतना जब पृथ्वी पर गिरी तब उसका शरीर 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर, पुतना का शरीर 21 किलोमीटर का था। कितना लंबा और चौड़ा, पहाड़ के समान पुतना का शरीर 21 किलोमीटर का, और कृष्ण छोटे से उनके ऊपर खेल रहे थे। यशोदा ने दूर से देखा हो तो मूर्छित होकर गिर गई, और उस समय समस्त गोपिया उस पुतना के ऊपर चढ़ के कृष्ण को उठाकर वापस लेकर आई। कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया गया, स्वस्ति वाचन किया गया, ब्राह्मण मंत्र इत्यादि उच्चारण किए गए। इस प्रकार उस पुतना से कृष्ण की रक्षा की, और यहां पर हाहाकार मच गया, अब क्या किया जाए। उतनी ही देर में नंद बाबा मथुरा से गोकुल में पहुंचे, पहाड़ जैसी पुतना को देखे, ब्रजवासियों ने सारी घटना बताई। नंद बाबा ने 1000 कुल्हाड़ी मंगाई और पुतना के देह को काटा गया, और काट काट कर छोटी छोटी चिताएं बनाई गई, और चिता के ऊपर पुतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं, जब पुतना के शरीर को जलाया गया तब उस चिता से अगुरु की सुगंध आने लगी, अगुरु की। प्रश्न होता हो सकता है कि ये बच्चों के मांस को खाने वाली, ये खून पीने वाली, ये राक्षसी पुतना की चिता से अगुरु की सुगंध क्यों आने लगी। अगुरु माने ऐसी सुगंधित वस्तु है जिसे अगरबत्ती बनती है, तो ऐसी अगुरु की सुगंध। इसका कारण यही था। यद्यपि पुतना राक्षसी थी, मांस खाने वाली थी, परंतु उस पुतना को अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया। कृष्ण जिसे स्पर्श कर देते हैं वो पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, कृष्ण का नाम किसी की जीवा से प्रष्ट हो जाता है, कितना भी पापी व्यक्ति हो परम पवित्र बन जाता है। यहां तो साक्षात कृष्ण ने स्पर्श कर दिया था। यह है कृष्ण की अद्भुत लीला। और उन दिनों कृष्ण मात्र 6 दिन के थे, 6 दिन की आयु थी। कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। कृष्ण की दया का कोई पारोवार नहीं, कोई सीमा नहीं है। उद्धव जी ने तो यहां तक कह दिया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सयापा यतपीय सारे लेभे गतिम दात्र्युचिताम ततोयम कम्मा दयालुम शरणम ब्रजे कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। इस संसार में कृष्ण जितना दयालु कौन हो सकता है कि हम उसकी शरण ग्रहण करें। अहो बकियम स्तनकाल कूटम, पुतना कृष्ण के पास क्यों आई थी? कृष्ण को मारने के लिए, और इरादा भी सही नहीं था, अपने स्तन पर विष लगा कर आई थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस पुतना को मारा नहीं, पुतना को तारा और पुतना को अपने धाम में भेजकर भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को अपनी मां बना लिया। लेभे गतिम दात्री, जो पुतना कृष्ण को मारने के इरादे से, मारने के लिए ही आई थी, उस पुतना को कृष्ण ने अपनी मां बना लिया। वैकुंठ में, गोलोक में पुतना कृष्ण की मां बन गई, नित्य जगत में नित्य माता का स्थान प्राप्त कर लिया। बताइए इस जगत में इससे ज्यादा दयालु करुणामय कौन हो सकता है? कृष्ण को कहा गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सार्थक हो गया यहां पर। कृष्ण की करुणा का कोई अंत नहीं है, अद्भुत करुणा। तो मानो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, इतनी बड़ी राक्षसी होते हुए भी, और वो भी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, फिर भी कृष्ण ने पुतना का उद्धार क्यों किया? फिर भी कृष्ण ने पुतना को अपने धाम में भेजा और वहां पर अपनी मां क्यों बनाया? तो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। यह बात सही है कि पुतना एक राक्षसी थी, राक्षस कुल में जन्म हुआ था, अनेक बच्चों को मारती थी, मांस खाई थी, मदिरा पी थी, और यहां तक कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन उस पुतना में एक गुण ये था कि वह पुतना जो थी भगवान के पास गई तो बहुत सुंदर गले में तुलसी की कंठी और भाल में बहुत सुंदर तिलक धारण करके गई, और भगवान ने देखा कि जैसी भी है भाव कुभाव अनख आलस हूं, जैसा भी भाव है कैसे भी आई है, परंतु आई तो है मेरे पास, और वो भी एक वैष्णव बनकर, एक भक्त बनकर, भक्त का आभूषण धारण करके आई है, ये तो मेरी मां बनने के लिए योग्य है। भक्तों, इस संसार में जो लोग तुलसी की कंठी धारण करते हैं और चंदन का तिलक धारण करते हैं, भगवान उसे अपना लेते हैं, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। इसलिए सदैव हम भक्तों को गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है, ये हमें जो भी कार्य करना है अपने मन और अपनी बुद्धि से नहीं करना है। कुछ लोग कुछ भी धारण कर लेते हैं, नहीं, शास्त्र में लिखा है तुलसी को गले में रखिए। क्यों? क्योंकि तुलसी कृष्ण को प्रिय है, भगवान को प्रिय है, और तुलसी जो है परम पवित्र है। यदि आप तुलसी को अपने कंठ में धारण करते हो तो अपने कंठ में जो भी वस्तु जाती है वह तुलसी को स्पर्श होकर जाती है, पवित्र बनकर जाती है, और जो भी बोलते हैं वह तुलसी को कंठ से स्पर्श होकर निकलती है, पवित्र होती है। और जिसके गले में तुलसी होती है ना, भगवान उसे अपना समझते हैं, अपना। संसार में भी आपने देखा होगा, यहां तो शायद नहीं होता होगा, हमारे शहरों में होता है, शहरों में गाय का प्रमाण बहुत कम है और कुत्ते बहुत ज्यादा रखते हैं, वो कुत्तों का प्रमाण बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो घर में दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, कुत्ते से सावधान। पता नहीं चलता है ये आदमी ही कुत्ता है या कुत्ता इनके घर पर है, ये घर में केवल कुत्ते ही रहते हैं। परंतु होता भी है, कुत्तों के साथ रहकर लोग कुत्ते जैसे ही हो जाते हैं, ये सत्य बात है। जो लोग जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा बनते हैं। इस संसार में जो कुत्ते को पालता है वो मरने के बाद सीधा कुत्ता बनेगा, सीधा कुत्ते को नहलाते हैं, खिलाते पिलाते, कुत्ते का चिंतन करते हैं। गीता में सीधा लिखा है, आप जिसका चिंतन करते हो अंत काले च यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। ये कलेवर, ये शरीर छोड़ते समय जो चिंतन होगा, अब कुत्ते के साथ रहो कुत्ते का चिंतन होगा, मरने के बाद सीधा कुत्ता, फिर भौंकते रहो। इसलिए गाय को रखना चाहिए। शहरों में लोग गाय को नहीं रखते हैं, कुत्ते को रखते हैं। रास्ते में भी बहुत कुत्ते होते हैं तो लोग बड़े परेशान रहते हैं। तब क्या होता है, कुत्ते को पकड़ने वाली गाड़ी आती है, डॉग वैन, यमराज जैसे होते हैं, और जो गली के कुत्ते हैं उसको कैसे भी करके पकड़कर वैन में, वो जो गाड़ी होती है उसमें फेंकते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। सभी कुत्तों को पकड़ते हैं और उसमें कभी कभी किसी कुत्ते के ऊपर बेल्ट लगा हुआ होता है, बेल्ट जानते हैं, पट्टा, पट्टी, किसी कुत्ते के गले में पट्टी होती है। तो जो कुत्ते पकड़ने वाले हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये किसी का पालतू कुत्ता है, इसको छोड़ दो। जो लावारिश कुत्ते हैं उनको पकड़ना है, तो वो जल्लाद आते हैं और लावारिश कुत्तों को पकड़कर चले जाते हैं। वैसे ही इस संसार में जब हमारी मृत्यु होती है तो यमराज के दूत आते हैं, और जिसके गले में ये तुलसी का पट्टा होता है यमराज जी छोड़ देते हैं, ये तो विष्णु के हैं, ये तो कृष्ण के हैं, इसे छोड़ो। जिसके गले में कंठी नहीं है उसे सालों को पकड़ो और डालो नरक में, लेके जाओ। कंठी होनी चाहिए परम पवित्र, और वो भी तुलसी की, तुलसी भगवान को प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस्कोन वाले हरे कृष्ण वाले इतनी टाइट कंठी क्यों पहनते हो, ये गले में इतनी टाइट क्यों है, इतनी कड़क क्यों है, बताइए। आप इसे कंठी कहते हो, कंठी क्यों कहते हो, हम इसे कंठी क्यों कहते हैं। कंठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कंठ के ऊपर पहनना है। कंठी को कंठ के ऊपर नहीं पहनेंगे तो क्या पेट के ऊपर पहनेंगे, नाभि के ऊपर पहनेंगे? कंठी सदैव कंठ के ऊपर ही होनी चाहिए। और कुछ लोग तो इतनी निंदा, इतनी ईर्ष्या करते हैं, हद हो जाती है, बोले इतनी कड़क कड़क कंठी पहनते हैं, भाई तेरा क्या जाता है, आपके घर से कंठी लेकर आए हैं, आपने पैसा दिया है, आपको दर्द हो रहा है। अरे भक्त कंठी पहनकर खुश है, सुखी है, प्रसन्न है, लेकिन लोग निंदा करते हुए थकते नहीं है। कंठी होनी चाहिए और साथ ही साथ तिलक होना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम जो तिलक करते हैं ये कोई स्टैंप नहीं है, ये कोई डिजाइन नहीं है। हाँ ये लोग बहुत अच्छी डिजाइन करते हैं, डिजाइन नहीं है ये, जो भी चीज हम करते हैं शास्त्र के अनुसार, तिलक भी शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। कभी पढ़ा है शास्त्र में, शास्त्र में लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करना चाहिए। ऊर्ध्व पुंड्र का अर्थ क्या होता है, ये जो तिलक हमने किया है इसे ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, और ये कोई डिजाइन नहीं, इसमें तात्पर्य है। क्या, ये जो आप तिलक देख रहे हैं एक लाइन जो है वो ब्रह्मा जी है और एक बाजू शिव जी है और बीच में भगवान विष्णु के चरण है, और बिल्कुल चरण के नीचे तुलसी जी का चिन्ह है, और ये जो तिलक है गोपी चंदन से बना हुआ है। द्वारिका में जहां गोपियों के देह विलीन हो गए उस गोपियों के देह से जो चंदन बना ये गोपी चंदन है। शास्त्र में लिखा है और शास्त्र के अनुसार कुछ लोग टीका करते हैं, कुछ लोग कैसे भी डिजाइन करते हैं, कहां लिखा है, शास्त्र में लिखा है ऊर्ध्व पुंडरक तिलक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऊर्ध्व पुंडर तिलक, और इसके पीछे शास्त्र और साइंस ये दोनों चीज है। तिलक करना है, तिलक के पीछे विज्ञान है। विज्ञान क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं, छोटी छोटी नसें, और साइंस ने तो यहां तक साबित किया है कि एक मनुष्य के शरीर में सभी नसों को खोला जाए पूरे ब्रह्मांड को घेर लेगी, इतनी सारी नसें हैं। और ये सभी नसों का जंक्शन जो है यहां पर है। आप जब बहुत सोचते हो तब आपको दर्द कहां होता है? यहां दुखता है। क्यों? क्योंकि यहां जंक्शन में जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम। इसलिए जब यहां पर हम गोपी चंदन लगाते हैं, जब हम तिलक करते हैं, तो जाम जो है शांत हो जाता है, पूरे शरीर में शांति मिल जाती है, और उस शांति में भगवान का भजन ठीक से होता है। यह है तिलक। तिलक की अद्भुत महिमा पद्म पुराण में वर्णन है। यमराज जी ने अपने दूतों को कह के रखा है, जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, जो लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनके पास कभी भी मत जाना है। जीवहान वक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतस्य स्मरति तत चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि तान आनयत्वमस्तो विष्णु कृत्यान। और जो लोग तिलक करते हैं उसके पास कभी मत जाना। एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था और रास्ते से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी के साथ टकरा कर गिर गया और स्थान पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के तीन दूत सपास हस्तवा तीन दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नैतु मागतान तीन भयंकर भयावह यमराज जी के दूत आए उस पापी को लेने के लिए। और उसी समय भगवान का योग, क्या पता एक कौवा वहां से उड़ा। कौवे का स्वभाव तो आप जानते हैं, कितना भी अच्छा मूर्ति बनाओ और चौराहे पर रखो, एक साल के बाद कौवे लोग बिगाड़ देते हैं। कौवा वहां से उड़ा और उसने मल छोड़ा, और उस समय वो जो व्यक्ति मर चुका था उसके भाल के ऊपर तिलक के समान वहां गिर गया। यमदूतों ने दूर से देखा, अरे बाप रे, इसने तो तिलक किया है, ये हमारा नहीं, ये तो भगवान विष्णु का आदमी है, छोड़ो छोड़ो, यदि हम इसे लेकर जाएंगे तो यमराज जी हमें डांटेंगे। उस व्यक्ति को यमराज के दूतों ने वहीं पर छोड़ दिया और उसे भगवान विष्णु के दूत अपने धाम में लेकर चले गए। भगवान का तिलक करने से, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करने से व्यक्ति नरक में जाने से बचाता है। इसलिए 2400 घंटा ये तिलक होना चाहिए, न जाने मृत्यु कब आ जाए, कब यम के दूत आ जाए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, पुतना जैसी राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए गई थी, परंतु तिलक और कंठी पहनकर गई थी, भगवान ने उसका उद्धार किया। हमें भी यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो इस प्रकार का तिलक कीजिए, तुलसी की कंठी धारण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं। येन येन अवतारेण परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, जो जो अवतार में भगवान हरि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने करोति कर्म रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभो, मन को आनंद देने वाली, हमारे कर्म को पवित्र करने वाली भगवान की जितनी भी लीला है, हे प्रभु कृपया करके आप हमें बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात, कृष्ण का जन्म नक्षत्र था, जन्मदिन नहीं था, जन्म नक्षत्र था। लगभग एक साल, कृष्ण का जन्म हुआ एक साल बीत गए। पर आप सब जानते हैं संसार में कोई साधारण बालक जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, कहीं भी पेशाब कर जाता है, काला कलूटा, न मुंह का कोई ठिकाना न वाणी का कोई ठिकाना, फिर भी एक साल होता है तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है? साल गिरह मनाते हैं। ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है। वास्तव में जन्मदिन भगवान का होना चाहिए। नंद और यशोदा ने सोचा कि आज कृष्ण का जन्म नक्षत्र है, आज हम जन्मदिन मनाएंगे। सबको नियोक्ता दिया, सबको बुलाया और बहुत सुंदर फेस्टिवल मनाया। सब लोग आए, अनेक लोग आए। तब यशोदा मैया ने देखा कि अब अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करना है, स्वागत करना है। तब यशोदा मैया ने कृष्ण को स्तनपान कराया, दूध पिलाया और सोचा कि घर में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत अतिथि हैं, इसलिए बाहर प्रांगण में आई जहां पर एक छकड़ा, एक बैलगाड़ी थी जिसमें बैल जुते हुए नहीं थे, ऐसे ही बैलगाड़ी और उसमें कई सारे पात्र थे। उस बैलगाड़ी के नीचे छांव थी तो नीचे कपड़ा बिछाकर यशोदा ने कृष्ण को सुला दिया। 10-15 बच्चे आजू बाजू में खेल रहे थे। यशोदा ने कहा कि बच्चे लोग जरा कृष्ण का ध्यान रखना, मैं अंदर काम कर रही हूं। बोले कोई बात नहीं मैया, हम लोग यहीं पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया अंदर गई, अतिथि सत्कार में लग गई और यहां कृष्ण को क्रोध आया। कृष्ण सोचने लगे, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति हूं, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्य मानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी मेरी सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, मैं कृष्ण कहां सोने के पलंग में सोता हूं और यहां ब्रज में आया तो मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुला रही है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। लोग मुझे प्राप्त करने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं करते हैं, ये मुझे छोड़कर अतिथियों का सत्कार करने चली गई, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। कृष्ण को क्रोध आया और क्रोध में कृष्ण रोने लगे। भक्तों, वास्तव में वो जो बैलगाड़ी थी, जैसे ही पूतना की मृत्यु हो गई, कंस ने और एक असुर को भेजा था जिसका नाम था शक्टासुर, और यह शक्टासुर बैलगाड़ी के रूप में आकर खड़ा था। कृष्ण के अंदर का भाव तो ये था, परंतु बाहर से देखा कि ये असुर ऊपर आकर मुझे मारने के लिए बैठा है। कृष्ण क्रोध में आकर रोने लगे। आप सब जानते हो बच्चा जब रोता है तो अपने दोनों पांव ऊपर करके हिलाता है, तो कृष्ण सोए सोए पांव ऊपर करके हिलाने लगे और कृष्ण के चरण हिलते हिलते कृष्ण के चरण का एक अंगूठा उस शकट के साथ उस बैलगाड़ी से स्पर्श हुआ। वह स्पर्श क्या हुआ, बैलगाड़ी हजारों फुट आकाश में उड़ी और आकाश में उड़कर वह बैलगाड़ी धड़ाम करके पृथ्वी पर गई। बहुत भयानक आवाज आई, सब लोग अंदर से बाहर आए, बैलगाड़ी टूट गई, फूट गई। बैलगाड़ी के ऊपर जितने भी सामान थे, मटके थे, सब फूट गए। यशोदा देखकर मूर्छित हो गई और नजदीक जाकर देखा तो कृष्ण आराम से खेल रहे थे, कृष्ण का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तब सभी अतिथियों ने पूछा, अरे ये बैलगाड़ी कैसे उलट गई, न तो इसमें बैल लगे हैं न कुछ है, ये बैलगाड़ी कैसे उलट गई। बच्चों ने कहा, हम लोग जानते हैं, बताओ बताओ। तब छोटे छोटे बच्चे कथा करने लगे, बोले ये कृष्ण सो रहे थे और सोते सोते कृष्ण जग गए और जगकर अपना पांव हिलाने लगे और ये पांव बैलगाड़ी के ऊपर मारा, बैलगाड़ी उड़ गई। तब जो बड़े लोग थे, अरे चुप, ये छोटा सा बच्चा बैलगाड़ी को मारे और बैलगाड़ी उड़े, हैं? तुम लोग पागल हो गए हो, मूर्ख हो गए हो। ये बड़े लोग जो थे, ये छोटे छोटे बालकों को मूर्ख कहने लगे, लेकिन वास्तव में मूर्ख बड़े थे। कभी कभी बच्चे जो हैं बहुत बड़ी बात कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत शुद्ध होता है। परंतु कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, और ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बड़ा होने का अभिमान होता है, हम लोग बड़े हैं, हम तुम छोटे बच्चे हो, हम बड़े हैं। परंतु बड़े होकर भी जो ज्ञान बच्चों को है वो बड़ों को नहीं है। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए जीवन में जहां से शुद्ध ज्ञान मिले वहां से प्राप्त कर लेना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है, यदि सोना गटर में भी पड़ा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को ले लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बालक भी यदि शुद्ध ज्ञान दे रहा हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु आज तो इतना अभिमान है, लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया। एक दिन इस प्रकार से शक्टासुर, ये कंस अनेक असुरों को भेजा, लेकिन सबकी लाश मथुरा में वापस जाती थी। तब कंस ने त्रिणावर्त को भेजा। त्रिणावर्त एक आंधी के समान आंधी बनकर ब्रज में आया। उस समय यशोदा मैया प्रांगण में कृष्ण को गोद में लेकर लालन कर रही थी। उस समय ऐसी आंधी चली, यशोदा की आंखें बंद हो गईं। कृष्ण हाथ से हवा में उड़ गए, निकल गए, और त्रिणावर्त नाम के असुर ने कृष्ण को पकड़ लिया। और कृष्ण को पकड़कर वह त्रिणावर्त कृष्ण को आकाश के मार्ग से ऊपर 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 लेते गया। कृष्ण ने आंख खोल के देखा, अरे बाप रे, मैं तो ऊपर आ गया, ये फ्लाइट तो बहुत ऊपर जा रही है। कृष्ण ने देखा, जब ये फ्लाइट बहुत ऊपर चली गई, जब त्रिणावर्त बहुत ऊपर चले गए, कृष्ण ने सोचा कि ये मुझे मारने के लिए आया, ये असुर है। उस समय कृष्ण ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ से त्रिणावर्त के गले को पकड़ लिया, और त्रिणावर्त के गले को पकड़कर कृष्ण ने ये दबाया। वह काल के समान भगवान कृष्ण के प्रहार से वह त्रिणावर्त आकाश से ऐसे गिरा जैसे एक भयानक पर्वत आकाश से गिरता है। और उस समय भगवान कृष्ण त्रिणावर्त के ऊपर खेल रहे थे। बार बार कृष्ण अद्भुत पराक्रम कर किए, परंतु किसी को कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं। सब लोग कृष्ण को अपना लाला समझ रहे थे, पुत्र समझ रहे थे, और यही मान रहे थे विष्णु की कृपा से कृष्ण बच रहे हैं। इस प्रकार अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन। तत्पश्चात एक दिन मथुरा में वसुदेव जी को कृष्ण की चिंता हुई। बोले, मेरे बालक का जन्म हुआ, जन्म से गोकुल में छोड़ दिया, उनका नामकरण अभी भी नहीं हुआ। तब वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य ने कहा, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को कहा कि आप गोकुल में जाओ और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य ने कहा, मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूं, और वो मेरे से नामकरण क्यों कराएंगे, वो तो अपने पुरोहित से नामकरण कराएंगे। बोले, नहीं, मैं कहता हूं, आप जाइए। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गए, और उस दिन भगवान का योग, घर पर कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने काम से खेत में गए, कुछ लोग अलग अलग जगह पर गए थे, और सब गोप गाय को चराने के लिए चले गए थे। मात्र नंद बाबा और दोनों बच्चे घर पर थे। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बहुत सुंदर स्वागत किया कि प्रभु, आप जैसे संतों का आगमन निश्चित मेरे जीवन में कुछ शुभ होने वाला है, क्योंकि संतों के आगमन से जीवन में मंगल प्राप्त होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका को पार करके, समुद्र को पार करके लंका में पहुंचे हैं, और जब सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के घर पर पहुंचे, विभीषण ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, तामस वेश कछु साधन नाही, मैं असुरों के साथ रहता हूं, आसुरी वृत्ति को धारण किया हूं और न तो भगवान का कुछ साधन न भजन करता हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तामस वेश कछु साधन नहीं। और ऐसे पापी पर भगवान क्यों कृपा करे? मुझे भगवान का दर्शन कभी होगा नहीं, ऐसा मैं मेरे मन में सोचता था। परंतु जब आप मेरे घर पर पधारे हनुमान जी महाराज, जब आप जैसे महात्मा का आगमन मेरे घर पर हुआ, तब मुझे विश्वास हो गया कि राम की कृपा मुझ पर निश्चित है, है और है। क्यों? क्योंकि अब मोहि भा भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। क्योंकि बिन भगवान की कृपा के बिना भक्तों का दर्शन नहीं होता है। जिस दिन भक्तों का आगमन, भक्तों का दर्शन हमारे गांव में, हमारे घर पर हो जाए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा दूर नहीं है। नंद बाबा ने स्वागत किया और गर्गाचार्य कुछ बोले, उनके पहले ही नंद बाबा ने कहा कि आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। बोले मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूं। बोले कुछ भी हो, आप तो ब्राह्मण हो, समर्थ हो। बोले सबको पता चलेगा, बोले घर पर कोई नहीं है। बोले नामकरण करोगे तो उसमें बहुत उत्सव करना पड़ता है, लोगों को भोजन कराना पड़ता है। बोले मैं बाद में करा लूंगा, आप केवल नाम दे दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा दीवारों के भी कान होते हैं। बोले कोई बात नहीं, सारी गैया चरने के लिए वन में गई है, चलो गौशाला में जाकर हम बैठते हैं, वहां कोई नहीं है। नंद बाबा दोनों बालक को लेकर, गर्गाचार्य को लेकर गौशाला में गए और वहां जाकर नंद बाबा ने सबसे पहले अपने बड़े बालक को हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नंद बाबा ने अपने बड़े बालक को सबसे पहले गर्गाचार्य जी की गोद में रखा और बड़े बालक के भविष्य को देखकर गर्गाचार्य ने कहा कि ये बालक में बहुत बल होगा, बहुत शक्ति होगी, बलवान होगा, इसलिए मैं इस बालक का एक नाम रख रहा हूं, बल। बल। और यह बालक अपनी लीला से सबको आनंद देगा, सबको रमाएगा, इसलिए इस बालक का दूसरा नाम है राम। दो नाम रखे, बल और राम, हम लोग दोनों साथ में बोलते हैं बलराम। इस प्रकार से बड़े बालक का नामकरण किया। अब वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने छोटे बालक को गोद में रखा। गर्गाचार्य तो सब कुछ जानते थे, ये तो साक्षात भगवान है, मैं इनका नाम रखूंगा, पूरी दुनिया का नामकरण ये करते हैं, अपना सौभाग्य समझे। बोले ये वसुदेव, नंद बाबा जी, प्रत्येक युग में आपका बालक अलग अलग वर्ण लेकर, अलग अलग वर्ण से जन्म लेता है। सतयुग में आपका बालक सफेद रंग का है, त्रेता युग में रक्त वर्ण का, और कलयुग में आपके बालक का रंग पीले रंग का होता है, और इदानीम कृष्णताम गत, और इस युग में आपका बालक श्याम वर्ण का होकर जन्म लिया है। क्योंकि यह बालक इस संसार में अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित करेगा, क्योंकि यह बालक आनंद का निदान होगा, आनंद का धाम होगा, क्योंकि यह बालक का वर्ण श्याम वर्ण है, इसलिए मैं आपके इस छोटे बालक का नाम कृष्ण रखता हूं। गर्गाचार्य ने नामकरण किया। भक्तों, सिद्धांत और तत्व की बात यह है कि वास्तव में गर्गाचार्य ने कृष्ण का नाम नहीं रखा। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कृष्ण का नाम तो 5000 वर्ष पहले पड़ा। नहीं, जैसे भगवान कृष्ण नित्य हैं, वैसे कृष्ण का नाम भी नित्य है। तो कृष्ण का नाम पहले से है, गर्गाचार्य ने मात्र प्रकट किया। तो इस प्रकार कृष्ण के नाम रखे गए और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर लीला सुनाते हैं। अब कृष्ण अपने पांव पर चलना सीख गए हैं, छोटे छोटे पांव हैं। और एक दिन की बात, कृष्ण बलदेव जी और कुछ सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते कृष्ण ने थोड़े से दूर जाकर माटी खा ली। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षित्वात् न इति मात्रेन वदे ने दयन। कृष्ण ने माटी खाई और बलदेव जी ने देख लिया, और बलदेव जी ने जैसे ही देखा तुरंत कहा कि कृष्ण माटी मत खाओ, यदि माटी खाओगे तो मैं मैया को कह दूंगा। कृष्ण ने कहा मैं किसी मैया भैया से डरता नहीं हूं, जाओ कहना है तो कह दो। तुरंत बलदेव जी दौड़कर मैया के पास गए और बलदेव जी शिकायत कर रहे हैं। आइए भजन के साथ इस लीला को सुनाए।
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते गए। कृष्ण इस जगत में अपने बनाए हुए जगत की माटी खाने लगे।
अद्भुत खेल संग संग खेलो, अद्भुत खेल संग संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, 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 तुरत श्यामन मुख में मेलो, तुरत श्यामन मुख में मेलो।
सखाओं के साथ खेलते खेलते माटी का छोटा सा ढेला बनाकर कृष्ण ने अपने मुख में रखा।
धूरत श्याम ने मुख में मेलो,
धूरत श्याम ने मुख में मेलो,
याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई,
याने गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
दूध दही को कब हूँ ना नाटी,
दूध दही को कब हूँ नाटी,
दूध दही को कब हूँ ना नाटी,
दूध दही को कब हूँ नाटी,
क्यों लाला ने माटी खाई,
क्यों लाला ने माटी खाई।
जब कृष्ण ने माटी खाई, बलदेव जी तुरंत दौड़कर यशोदा के पास गए। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई। कृष्ण ने माटी खाई थी, कृष्ण मुंह में माटी थी, लेकिन दूर से यशोदा आई हुई देखकर कृष्ण जल्दी जल्दी उस माटी को निगलने का प्रयास किया। यशोदा आई और अब यशोदा कृष्ण को कह रही है कि कान्हा लाला, मैं तुझे दूध देती हूँ, दही देती हूँ, इस दूध दही को छोड़कर तू माटी क्यों खा रहा है?
दूध दही को कब हूँ ना नाटी,
दूध दही को कब हूँ नाटी,
क्यों लाला तूने माटी खाई,
क्यों लाला तूने माटी खाई,
यशोदा समझावे साथी,
यशोदा समझावे साथी।
यशोदा हाथ में साटी लेकर, छड़ी लेकर समझा रहे,
यशोदा समझावे ले साथी,
यशोदा समझावे ले साथी,
या के नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई,
या के नेक दया नहीं,
यशोदा को दया नहीं आई,
या के नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई,
या के नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
यशोदा ने कहा, काना तूने माटी खाई है? माटी तो अंदर थी लेकिन अपना बचाव करते हुए कहा। यशोदा ने कहा कि तूने माटी खाई है? तब कृष्ण कहते हैं बोले बोलता क्यों नहीं है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण बोले, नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे माँ, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई है। बोले या ये सारे बच्चे क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ माँ, सर्वे मिथ्या भी संचिने, सब लोग मिथ्या, ये सब लोग झूठे हैं। बोले अच्छा, ये सब लोग झूठे हैं और तू ही हरिश्चंद्र का पुत्र बनकर पैदा हुआ है, यदि तूने माटी नहीं खाई तो दिखा अपने मुंह में। कृष्ण मुंह नहीं खोल रहे हैं, तब यशोदा अपने हाथ कृष्ण के मुंह में डाल रहे हैं।
मुख के संग में मुख के सन मुख उंगली मेली,
मुख के संग मुख उंगली मेली,
निकल पड़ी माटी की ढेली,
निकल पड़ी माटी की ढेली,
वीर भई सखियन की हेली,
वीर भई सखियन की हेली।
यशोदा ने मुख में हाथ डाला और हाथ डालकर ऐसे किया, वो माटी की ढेली नीचे गिर गई और कृष्ण बहुत डर गए क्योंकि यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई थी। बहुत सुंदर दिखता है।
मुख के सन्मुख उंगली मेली,
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 निकल गई माटी की ढेली,
निकल गई माटी की ढेली,
भीर भाई सखियन की हेली,
भीर भाई सखियन की हेली,
याने देखे लोग लुकाई यशोदा सुन माई,
याने देखे लोग लुकाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई 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 यशोदा सुन माई,
मोहन को मुखड़ो फरवायो,
मोहन को मुखड़ो फरवायो,
तीन लोक बामे दर्शायो,
तीन लोक बामे दर्शायो,
तब विश्वास यशोद ही आयो,
तब विश्वास यशोद आयो,
कृष्ण ने कहा मैंने माटी नहीं खाई, यशोदा के हाथ डालने से माटी गिर गई। तब कृष्ण ने अपना मुख खोलकर दिखाया, जब कृष्ण ने अपना छोटा सा मुख खोला उस समय यशोदा ने देखा कृष्ण के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मा है, अनेक जीव है, और उस अनेक ब्रह्मांडों के बीच में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी और उसमें एक छोटी सी यशोदा और छोटे से कृष्ण है। तब जब यशोदा ने यह दृश्य देखा तब यशोदा के मन में हुआ ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मेरा पुत्र बनकर जन्म लिया है।
मोहन को मुखड़ो फरवायो,
मोहन को मुखड़ो फरवायो,
तीन लोक बामे दर्शायो,
तीन लोक बामे दर्शायो,
तब विश्वास यशोद ही आयो,
तब विश्वास यशोद आयो,
ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई,
ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
कृष्ण ब्रज के माटी की विशेषता कहते हैं, ब्रज वृंदावन ब्रज गोकुल में जो माटी है वो माटी कैसी है कृष्ण कहते हैं।
ऐसो रस है नहीं माखन में,
ऐसो रस है नहीं माखन में,
नहीं मिश्री में वादाखन में,
नहीं मिश्री में वादाखन में,
जो रस है ब्रज रज चाखन में,
जो रस है ब्रज रज चाखन में,
हे मैया जो रस ब्रज की रज में है वो रस माखन में नहीं है, वरस मिश्री और मेवा में नहीं है, जो रस ब्रज की रज में है।
ऐसो रस है नहीं माखन में,
ऐसो रस है नहीं माखन में,
नहीं मिश्री में वादाखन में,
नहीं मिश्री में वादाखन में,
जो रस है ब्रज रज चाखन में,
जो रस है ब्रज रज चाखन में,
याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई।
ये माटी ने तो मुक्ति की भी मुक्ति करा दी।
याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई,
याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई।
यारज को सुर नर मुनि तरसे,
यारज को सुर नर मुनि तरसे,
बड़ भागी जन नित नित बरसे,
बड़ भागी जन नित नित बरसे,
जाकी लगन लगी हरी तरसे,
जाकी लगन लगी हरी तरसे।
ये जो माटी है, ये जो रज है, इस रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता तरस रहे हैं, और वह ब्रज का जो रस है, ब्रज की जो माटी है, आज मुझे प्राप्त हुई है, मैं क्यों न खाऊं।
या रज को सुर नर मुनि तरसे,
नर को सुर नर मुनि तरसे,
बड़ भागी जन नित नित तरसे,
बड़ भागी जन नित नित तरसे,
जाकी लगन लगे हरि तरसे,
लगन लगी हर तर,
यही घासी राम कथ गाई यशोदा सुन माई,
यही घासी राम कथ गाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई,
तेरे लाला ने माटी खाई श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जी रंग। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करिबे हला नंद लाला कबीतन ज्वाला पप साला दयाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी विसारी गिरधारी रे जिनी गए विसारी गिरधारी रे जिनी गए विसारी गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री कृष्णचंद्र भगवान
जय
नंद के लाला की
जय
श्री लगोबाद की
जय
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि हो।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई और कृष्ण ने अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। भक्तों इस संसार में कुछ लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं, कहते हैं कृष्ण झूठे हैं, कृष्ण झूठ बोलते हैं। परंतु भागवत कहता है, समस्त देवतागण कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, सुध गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण जो है सत्यम परम धीमही परम सत्य है। तब कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, यदि कृष्ण परम सत्य है तो फिर यशोदा को झूठ क्यों बोले, मैंने माटी नहीं खाई। भक्तों कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कृष्ण ने जब माटी खाई, यशोदा ने पूछा कि कृष्ण तूने माटी खाई, तो कृष्ण ने कहा मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई। कृष्ण झूठ नहीं बोले। मैया के पूछने पर कृष्ण ने कहा मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, मेरे साथ इस संसार में अनंत काल से रहने वाले अनंत जीव सभी जीवों ने साथ में मिलकर माटी खाई, मैंने अकेले ने नहीं खाई। मैया विश्वास नहीं तो देख लो मेरे मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों ने साथ में मिलकर माटी खाई, अकेले ने नहीं खाई। यह है भगवान कृष्ण का पराक्रम ऐश्वर्य। इसके बाद यशोदा मैया दिवाली के दिन कृष्ण के लिए मक्खन बनाने बैठती हैं और कृष्ण के लिए मक्खन बनाते बनाते यशोदा मैया भगवान कृष्ण का नाम ले रही है, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी च। यशोदा मैया अपने घर के कार्य कर रही हैं और घर के काम करने के साथ साथ भगवान का नाम ले रही है। भक्तों भक्तों को यही करना है, अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है। आप पत्नी हो तो घर के काम करो, पति हो तो पैसे कमाओ, ऑफिस जाओ, खेत के काम करो, कार्य करने हैं, परंतु कार्यों के साथ साथ भगवान का नाम लेना है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित हम सभी दोषों से मुक्त होंगे। और भक्तों कलयुग में यदि कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करना है, भगवान का नाम इस कलयुग में यदि हमें सुखी होना है या भगवान की प्राप्ति करनी है तो मात्र भगवान का नाम लेना होगा। कुछ लोग कहेंगे ध्यान करेंगे तो नहीं चलेगा, तपस्या करेगा नहीं चलेगा। भक्तों भागवत में जब निमि महाराज ने करवाजन ऋषि को पूछा कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तब उन्होंने उत्तर दिया, अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन है, अलग अलग कार्य है। यदि आपको सतयुग में एक कम करो क्या हो रहा है, यदि आपको सतयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो भागवत में लिखा है कृते ध्यायतो विष्णुम, भगवान विष्णु का ध्यान करो। सतयुग में ध्यान की विधि है, त्रेतायुग में भगवान की प्राप्ति करनी है त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में यज्ञ करना चाहिए। त्रेतायुग में यज्ञ करके भगवान को पा सकते हो, सतयुग में ध्यान करके, और जो युग में जो साधन बताए हैं जो कार्य बताए वही करने चाहिए। अब कुछ लोग सतयुग में यदि यज्ञ करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। सतयुग में कृते ध्यायतो, मैं श्लोक इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, ऐसा नहीं हरे कृष्ण वाले आए हैं अपने मन की बात बताकर चले गए, और मैं जो बोल रहा हूं इस सभा में इस बात से किसी को भी तकलीफ है और कोई इस बात को यदि गलत साबित करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मैं जिस प्रकार से प्रमाण दे रहा हूं उस प्रकार से प्रमाण देना होगा। भक्तों भावुकता में आकर किसी पाखंडियों की बात में फंस मत जाओ, शास्त्र में क्या लिखा है उस बात को जानो, बुद्धिमान बनो। शास्त्र में भागवत में सीधा कहा गया है कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान को प्राप्त करना है ध्यान करो। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करो। द्वापरे परिचर्यायाम, यदि द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करो। और कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो शास्त्र में लिखा है कलो तद हरि कीर्तनात, कलयुग में मात्र भगवान का कीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये प्रमाण है, इसे कहते हैं प्रमाण सबूत। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग मात्र नाम के आधार पर टिका है। अपने कल सुना महाराज परीक्षित को पता था कलयुग में सभी दोष है, कलेर दोषे निधे राजन, हे राजन इस कलयुग में पदम पदम यत विपदा, सभी जगह पर दोष, कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में क्यों आने दिया? क्या परीक्षित मूर्ख हो गए थे? नहीं, परीक्षित जानते थे कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण। परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग में यद्यपि बहुत दोष है परंतु एक गुण है, और वह गुण कौन सा है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, कलयुग में एक गुण यह है। अन्य युगों में सतयुग त्रेता द्वापर युगों में हजारों हजारों सालों तक यज्ञ ध्यान और तपस्या करने से जिस भगवान की प्राप्ति नहीं होती, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मात्र भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है नाम का युग, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान के नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये मैं प्रमाण देते जा रहा हूं। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनी, नाम और नामी में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान को पाना चाहते हो भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता, इस कलयुग में भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान का नाम ही कलयुग के दोषों से मुक्त करेगा। ये बात कुछ लोग जानते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम लेना चाहिए, परंतु प्रश्न यह है कौन सा नाम लेना चाहिए। हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, कौन सा नाम? तब अब मैं कहूंगा कि आप फलाना नाम लीजिए, ये मत सुनिए। संसार में सब लोग अपने अपने मन और बुद्धि से बोलते हैं, भागवत में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, इस बात को अपने जीवन में उतारिए। लोग अपनी बुद्धि से कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु हमें शास्त्र में क्या लिखा है इस बात को उतारना है, इस बात को समझना है और जीवन में लागू करना है। ये बात सत्य है, कलयुग में केवल नाम लेने से ही हम सुखी होंगे, मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करेंगे। परंतु कौन सा नाम, पद्म पुराण में लिखा है, खोलकर पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं, यह है प्रमाण। यद्यपि संस्कृत का श्लोक, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं, द्वा माने दो, त्रिश माने तीस, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर हो। कौन सा मंत्र जपना चाहिए, यह वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिख रहे हैं। कौन सा? द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, उन्होंने लिखा है जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और साथ ही साथ नाम षोडश कान्वितम, जिस मंत्र में 16 नाम हो। प्रजपन वैष्णवो नित्यम, यदि कोई इसका जप करता है, प्रजपन माने गौमुख, गौमुखी में माला के ऊपर संख्या पूर्वक यदि कोई इसका जप करता है, प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत, तो इस मंत्र का जाप करने से जहां पर राधा और कृष्ण रहते हैं उस स्थान को प्राप्त हो सकता है। यह है प्रमाण, यह है सबूत। अब बताइए कौन सा मंत्र ऐसा है जिसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम है। कौन सा जानते हैं आप लोग? यही है ना, कि इसके अलावा और कोई है? इसके अलावा है और कोई? मर जाओगे परंतु मिलेगा नहीं और कोई मंत्र, क्योंकि शास्त्र कहता है एक नहीं अनेक को प्रमाण। आप कली संतरण उपनिषद प्रमाण है, वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखा, उनमें से एक है कली संतरण उपनिषद, और उसमें सीधा क्लियर लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकाम नामन कली कलमश नाशनम नात परत रोपाय सर्व वेदेशु दृश्यते। सभी वेदों को देखने के बाद समस्त वेद उपनिषद शास्त्रों का सार है, हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर ही व्यक्ति कलयुग के दोष से मुक्त हो सकता है, सुखी होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यह है प्रमाण। और कलयुग में इस मंत्र को छोड़कर भगवान का धाम प्राप्त मुश्किल है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति करभाजन ऋषि भागवत में कहते हैं, यजन्ति ही सुमेधस, जो बहुत बुद्धिमान है वही व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करेंगे। भक्तों, साक्षात भगवान को यह मंत्र देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा और यह मंत्र को दिया। और भक्तों, यह मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं, सभी मंत्रों का राजा है, क्योंकि न तो इसमें बीज है, न आदि है, न अंत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंत्र बैठे हुए, सोते हुए, चलते हुए ले सकते हैं, या कभी कभी स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अपवित्र अवस्था में होती हैं, क्या ये लोग ये मंत्र जप सकते हैं? ये मंत्र किसी भी समय, किसी भी काल, कोई भी व्यक्ति, पात्र अपात्र कुछ भी देखे बिना कोई भी जप सकता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। महामंत्र देश काल नियम न अस्ति। यह महामंत्र जपने में किसी भी प्रकार का देश काल का नियम नहीं, देश काल नियम नस्ति, सर्व सिद्धि, कोई नियम नहीं। आप कभी भी सोते हुए, बैठे हुए, चलते हुए आप इस महामंत्र का जाप कर सकते हो। और इस महामंत्र का जाप करने से बहुत कम समय में हृदय में पवित्रता आ जाती है। आप देखेंगे अपने आप को, आप यदि कोई नशा नहीं छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं, मत छोड़िए। आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं, शराब नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, परंतु एक बार भगवान का यह महामंत्र लेना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। कैसे छूट गया आपको भी पता नहीं चलेगा। भगवान के नाम में, इस महामंत्र में इतना रस है, इतनी शक्ति है, आप क्या छोड़ोगे, हम क्या छोड़ेंगे। भगवान का नाम, ये महामंत्र आप लेते रहिए, भगवान हृदय में आ जाएंगे। हमारे हृदय में जितनी गंदगी है सब साफ करके फेंक देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं चाय पीता था, मैं चाय पीती थी, मैं नशा करता था। भगवान सब कुछ अपने आप छुड़ा देंगे। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको लेना है। क्या लेना है? भगवान का नाम। महामंत्र जपिए, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये महामंत्र को जपकर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 16 नाम महामंत्र का जप करता है, 16 माला का जप करता है, तो मरने के बाद वह व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है। आप कहोगे 16 ही क्यों? इसमें भी एक तत्व सिद्धांत है। ये जो माला हम आपको देने वाले हैं उसमें 108 मोती है, और 108 मोती को, एक एक मोती पर एक बार महामंत्र लाइए, माला लाइए, ठीक। ये माला जिसको चाहिए उसको आज दी जाएगी। ये माला है, इसके ऊपर 108 मोती हैं और ये मुख्य मोती, आप समझिए ये कृष्ण है और बाकी सब गोपियां हैं, 108 गोपी। और माला जपते समय ये उंगली स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि ये उंगली जो है बहुत पाप करने वाली उंगली है। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छा है, गंदा है, इसके अलावा हम निर्देशिका उंगली के द्वारा बहुत पाप करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। और हमने गोमुखी ऐसे ही बनाई है कि ये बाहरी रहती है, अंदर नहीं रहती है। तो ये उंगली को दूर रखिए, माला को पकड़िए, ये मुख्य मोती के ऊपर पंच तत्व का मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। यदि आपको नहीं आता है तो कल आपको दिया जाएगा, उसे पढ़कर आप बोल सकते हो। और फिर आगे एक मोती के ऊपर एक महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
ये हो जाने के बाद दूसरे मोती के ऊपर दूसरा मंत्र, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कुछ लोग क्या करते हैं, नए नए होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तीन मंत्र में तो पूरी माला घुमा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, एक मोती पर एक पूरा महामंत्र, फिर दूसरे मोती पर दूसरा पूरा महामंत्र, ऐसे करते करते आप यहां पर पहुंच जाओगे, 108 मोती समाप्त हो जाएंगे। एक चीज आपको याद रखना है, क्या, कि जब आपकी एक माला समाप्त हो जाएगी तो फिर यहां पर आप पहुंच जाओगे तो गोल गोल नहीं घूमना है, यहां से आप वापस लौट जाइए, घुमा दीजिए इसको और फिर से शुरू कर दिए जय श्री कृष्ण चैतन्य महामंत्र। और कभी कभी ऐसा होता है शुरू शुरू में ये उंगली स्पर्श हो जाती है, शुरू शुरू में गोल गोल घूम जाते हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई हानि नहीं है। ये कृष्ण की भक्ति ऐसी है, दावन मिलिन वा नेत्र न स्खलेत न पतेत, इसमें थोड़ा भी भूल हो जाए, कितनी बड़ी भी भूल हो जाए तो कृष्ण क्षमा कर देते हैं। और देवताओं की भक्ति में एक श्लोक, एक वाक्य, एक शब्द में आगे पीछे हो गया, मर गए। और कृष्ण की भक्ति में रत्नाकर नाम के डाकू ने उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपकर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार यह है माला, और इसके ऊपर निरंतर भगवान। और ऐसा एक माला का जब जप होगा, एक बार घूमोगे तब एक माला समाप्त होगी। और इस प्रकार 16 माला आपको आप जब जपते हो 2 घंटे में, तो 16 माला जपने में लगभग 22,000 या 25,000 भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता है। और विज्ञान के अनुसार हम हमारे जीवन में एक दिन में 22,000 से 25,000 तक सांस लेते हैं। हम ये सांस ले रहे ना, ये सांस जो है हम एक दिन में कितनी बार लेते हैं? कुछ लोग जो मोटे होते हैं वो ज्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग योगी जैसे होते हैं वो कम लेते हैं, 22,000 से 23-24,000 तक लेते हैं। हम जब ये 16 माला जप करते हैं तब हमारे प्रत्येक सांस के ऊपर एक एक भगवान का नाम स्थित हो जाता है, क्योंकि 16 माला में 25,000 नाम हमारे मुख से निकल जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो इस प्रकार भगवान का नाम जपना कलयुग में, ये भगवान का नाम का जाप करना, कीर्तन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, है? और इसी से ही हम इस जीवन में सुखी हो सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा मन वश में नहीं है, मन भटकता है, जितनी भी चिंता क्लेश मन से, बोले मन को शुद्ध करने के लिए एक ही रास्ता है, मनः त्राईते इति मंत्र। मन को शुद्ध करने के लिए मात्र मंत्र, मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र जपना होगा। मंत्र का अर्थ ही होता है म माने मन, त्र माने त्राईते, जो मन का त्राण करे, मन को शुद्ध पवित्र बना दे, उसे कहते हैं मंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, बुद्धि को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, भक्तों अपने जीवन को शुद्ध कर दीजिए और सुखी होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लीजिए। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भक्त वास्तव में भगवान के प्रति समर्पण होना चाहते हैं, आज तक जो पाप हुआ जीवन गया वह गया, परंतु अब जब आंख खुल रही है, अब जब ज्ञान मिला है, तो भक्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन डरने की जरूरत नहीं है, मां सुच। कुछ लोग डर गए, डर जाते हैं कि हमने इतना पाप किया अब क्या होगा। कोई बात नहीं, अब तक भले पाप हुआ परंतु अब भी आप भगवान की माला लेकर भगवान का नाम जपने लगते हो, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान कर दूंगा। आपको यदि मोक्ष चाहिए, पापों से मुक्त होना है, भगवान का नाम जपिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सबका धन्यवाद, कीमती समय निकाल कर आए।